समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो करिश्मा, हेलो एंड गुड डे एवरीबॉडी। वी आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 एफएम। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट करिश्मा राय एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेडलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। We begin with the news headlines first. Legendary playback singer Asha Bhosle passes away in Mumbai at 92.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महिला आरक्षण अधिनियम को सही भावना के साथ लागू करने का समय आ गया है। संसद सदस्यों से इस अधिनियम में संशोधनों को पूर्ण समर्थन से पारित करने का आह्वान किया।
Campaigning is in full swing for assembly elections in West Bengal and Tamil Nadu. Prime Minister holds rally in Siliguri, West Bengal.
अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी, पंजीकरण 15 अप्रैल से।
यूएस एंड इरानियन डेलीगेशंस लीव इस्लामाबाद विदाउट रीचिंग एन एग्रीमेंट ऑन वेस्ट एशिया पीस डील। Yes, and now listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level, and today we will pay our tributes to legendary singer Asha Bhosle. Today, the world of music has fallen silent as we bid farewell to a voice that defined generations. Legendary singer Asha Bhosle is no longer with us. At the age of 92, she leaves behind not just memories, but melodies that will echo forever.
एक ऐसी आवाज जो गीतों के जरिए हंसी, प्यार किया, नाची और रोई, उसने अपनी अंतिम विदाई ले ली है। आशा ताई जैसा कि लाखों लोग उन्हें प्यार से पुकारते थे, उनका मुंबई में एक छोटी सी बीमारी के बाद निधन हो गया। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष सिलार ने अस्पताल के बाहर मीडिया से बात करते हुए इस खबर की पुष्टि की।
And she was admitted to a private hospital yesterday evening due to a chest infection and exhaustion. Her last rites will be held tomorrow at 4 p.m. at Shivaji Park.
और वह महज एक गायिका से कहीं बढ़कर थी, वह एक भावना थी। आशा भोसले ने विभिन्न भाषाओं में 12,500 से भी अधिक गीत रिकॉर्ड किए, जिनमें से हर एक में उनका बेमिसाल आकर्षण, उनकी चंचल भावना और उनकी रूहानी आवाज की गहराई झलकती थी।
From romantic whispers to electrifying cabaret numbers, from guzzles dripping with emotion to peppy beats that made India groove, she could do it all. Versatility was her strength, her identity.
और इसके साथ ही श्रोताओं, उन्होंने पहली बार 10 साल की उम्र में मराठी फिल्म माझा बाल के लिए गाया था और चला चला न भला शीर्षक वाला एक गीत रिकॉर्ड किया था। उनकी पहली हिंदी फिल्म रिकॉर्डिंग 1948 के फिल्म चुनरिया के लिए थी, जिसमें उन्होंने सावन आया गीत गाया।
एंड हर वॉइस बिकेम द सोल ऑफ काउंटलेस हीरोइंस, from Meena Kumari and Madhubala to Jeena Taman and later Kajol and Urmila Matondkar, she was timeless, flowing effortlessly across generations.
Party! बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए।
Yes, each song a memory, each note a heartbeat, each lyric brought alive by a voice. And today, as we say goodbye, it doesn't feel like an end, because legends like Asha Bhosle never really leave us. They stay in the songs we hum, in the moments we cherish, in the silence that suddenly feels musical.
श्रोताओं कहते हैं कि कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो तय सीमाओं के भीतर ही रहते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो चुपचाप उन सीमाओं को फिर से परिभाषित कर देते हैं। आशा भोसले सचमुच अपनी तरह की एक ऐसी ही थी। उनकी अपनी अलग पहचान तब सबसे ज्यादा उभर कर सामने आई जब उन्होंने बॉलीवुड संगीत के हर पहलू को खंगाला। अलग अलग शैलियों, भावों और अंदाजों के बीच वे बड़ी सहजता से विचरण करती थी।
Be it a soft romantic melody, a soulful ghazal, or a lively playful number, her voice carried a range that felt almost limitless.
दिलचस्प बात ये रही कि जहां उनकी बहन लता मंगेशकर अपनी शालीनता और गाने चुनने में अपनी खास पसंद के लिए जानी जाती थी, वहीं आशा ताई ने हर तरह के गानों को अपनाया। बोल्ड बोल, हटके विषय और ऐसे गाने जिन्हें गाने से कभी कभी दूसरे लोग हिचकिचाते थे, और शायद यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है।
एंड शी डिडंट जस्ट सिंग सॉन्ग्स, शी गेव वॉइस टू इमोशंस दैट वर फियरलेस, एक्सप्रेसिव एंड अलाइव।
बचपन में क्या होता है कि बड़ी बहन की नकल छोटी बहन करती है, तो दीदी जैसा गाती थी वैसा मैं गाती थी। लेकिन मैंने जब देखा कि दीदी लता मंगेशकर का नाम इतना बड़ा हो गया, तो उसकी जैसे गाने वाले को गाना कौन देगा, उसकी अपनी जगह कुछ नहीं होगी। लोग सब कहेंगे कि अरे बहन जैसा गाती है वो लता नहीं है, वो जैसा जो है वो मुझे लाइफ में पसंद नहीं है, मुझे चाहिए कि मैं खुद क्या हूँ, वैसा मेरा गाना मेरा होना चाहिए। तो फिर मैंने ये शुरू किया कि गाना दीदी कैसा गाती है उसको बिल्कुल अलग से निकल जाने का, तो बचपन में मैंने कैरमन मरांडा का गाना बहुत सुना था, पिक्चर देखते थे छोटे छोटे थे जब, तो कैरमन मरांडा गाती थी, मम 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 करो मम कर सुबा ला ला ला। वो सुन के हम बोलते थे ये कुछ अलग है, ये अपने जैसा नहीं, क्योंकि हम लोग क्लासिकल सीखते थे, तो इसको पकड़ो। फिर ऐसा वक्त आया कि एक गाना आया मिर्जान बाबा खान या ला ला रोशनदान, तो बगैर पूछे मैंने रिकॉर्डिंग में गया, मिस्टर जॉन बाबा खान या ला ला रोशनदान, ये जैसा किया तो अण्णा श्री रामचंद्र चिल्लाते हुए, अरे अरे क्या किया तुमने, बहुत अच्छा है, ऐसे ही करो। आहिस्ता आहिस्ता मैंने बोला कि अपना गाना थोड़ा सा अलग होना चाहिए।
And over time, the spirit earned her a special place as the bold voice of her era. Her partnership with R.D. Burman redefined Hindi film music in the 1960s and 1970s.
दशकों से भी ज्यादा लंबे अपने करियर में कई भावनाएं अपनी आवाज से बखूबी व्यक्त करने वाली आशा भोसले ने अलग अलग पीढ़ियों के अलग अलग शैलियों से काम करने वाले कई संगीतकारों के साथ उनकी ही सहजता के साथ काम किया। आइए सुनते हैं हमारी मुंबई संवाददाता से।
हिंदी फिल्म जगत की सबसे मशहूर सांगीतिक जोड़ियों में से एक यानी आशा भोसले और आरडी बर्मन, जिन्हें पंचम दा के नाम से जाना जाता था, बाद में वे दोनों जीवन साथी भी बने, लेकिन उससे पहले इस जोड़ी की जुड़ी प्रतिभा से बने नगमों ने मानो एक नया दौर लिख दिया। हमें बता रही है फिल्मी संगीत के अभ्यासक डॉक्टर मृदुला दाढ़े।
जब उन्होंने साथ में काम किया तो बेहतरीन नगमे हमें सुनने को मिले। जब एक व्यक्ति लीक से हटके कुछ सोचती है तो जाहिर है उसमें काफी सारे रिस्क रहेंगे। ऐसे जो गाने बनते हैं वो काफी हद तक ट्रेडिशनल नहीं रहते, मतलब मेलोडी की जो एक लीनियर लाइन है वो शायद आपको कहीं डिस्टॉर्टेड मिलेगी। और आशा जी की महानता ये है कि ऐसी कई चुनौतियां उन्होंने बहुत ही आसानी से तय कर दी। कितने ही ऐसे गाने हैं जो बहुत ही कठिन है गाने के लिए। कठिन इसलिए है कि स्विच ओवर करना, जो प्रोज पार्ट आता है गाने में से स्विच ओवर करना, फिर से म्यूजिकल करना, म्यूजिकल पार्ट से स्विच ओवर करके प्रोज पार्ट पर आना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है।
और पंचम दा के संगीत निर्देशन में आशा ताई ने गाए कई गानों की तरह ये गीत भी यादगार बन गए, अजरामर बन गए। परिक्रमा के लिए मुंबई से मैं अंकिता आप्टे।
1990 के दशक में इंडिया पॉप की लहर भी आई और आशा उस समय की उन चुनिंदा वरिष्ठ गायिकाओं में से एक थी जिन्होंने इस नई धारा को अपनाया और इस बदलाव का स्वागत किया। उन्होंने लेस्ली लुइस के साथ मिलकर कुछ गानों को रिमिक्स किया और एक नया एल्बम लॉन्च किया। क्रोनोस क्वांटेंट और बॉय जॉर्ज जैसे कलाकारों के साथ उनके सहयोग ने भारतीय संगीत को वैश्विक प्रभावों के साथ मिलाने की उनकी क्षमता को भी प्रदर्शित किया।
Yes, and in the 2000s and beyond, Asha introduced herself to the younger generation and the audience met her through her voice in remixes and some of the old-time classics. And she was also one of the only singers from the golden era of Hindi film music who continued to perform into her 80s. Tributes are pouring in following the passing of the legendary singer. Personalities from political arena to the film and music world are expressing grief over her demise. Prime Minister Narendra Modi, President Draupadi Murmu and Vice President C.P. Radhakrishnan have expressed sadness over the demise of the legendary singer. Singer Shankar Mahadevan has said, Asha Bhosle's voice will live forever.
A very sad day for all of us and a very sad day for Indian music. Just cannot believe that our dearest Asha Thai is no more. Didi and her music will never ever perish from this phase of this earth till human beings exist, because her contribution is, you know, you cannot describe in words. She is somebody who's going to live forever.
Singer Usha Uttup has also expressed grief over the demise of her friend Asha Bhosle.
End of an era, she was such an amazingly versatile singer. It's just unbelievable to talk about Asha Ji Bhosle in the past. Every time I was in Bombay, I always passed by Prabhu Kunj and I used to ring up Lata Ji Mangeshkar at that time. So versatile, there's never been another versatile singer like her.
Actor Raza Murad also speaks about the great singer.
आशा ताई के गुजरने से एक दौर खत्म हो गया. आज आशा ताई हमारे बीच में नहीं है. आशा जी की आवाज में शोखी थी, चंचलता थी, रवानी थी, जवानी थी, शरारत थी और जवान आवाज थी.
Now let's listen to what singer Ila Arun has to say.
बहुत बिंदास, बहुत सुरीली, बहुत मस्त, जीवन को प्यार करने वाली, खाने को प्यार करने वाली, और कभी उनको अहंकार नहीं था. और नए लोगों के साथ तो जब वो खड़ी होती थी तो आप ये कह नहीं सकते कि उनकी उम्र क्या है.
Yes, and as we come to the end of today's program, we pause to remember a voice that has defined generations, Asha Bhosle ji, an artist whose songs were not just melodies but emotions that lived with us through every phase of life. From soulful ghazals to pappy chartbusters, her versatility knew no bounds. She didn't just sing songs, she gave them life, color, and timeless meaning.
और श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
The Union Territory of Ladakh is actively promoting the Apricot Blossom Festival as a major tourist attraction to boost visitor footfall during the otherwise lean month of April, and the festival has been organized by the Tourism Department Kargil at various locations including Darcheek's village, showcases the breathtaking beauty of apricot blossoms that transform the region into a scenic landscape of pink and white hues in early spring. We have a report.
Apricot festival have been organized and are being held at different locations across Ladakh, stretching from Turtuk to Minji, highlighting the widespread celebration of the blooming season and promoting tourism across regions. Lieutenant Governor of Ladakh, who attended the Chulim Induk festival as the chief guest at Darcheek, emphasizes the importance of such initiatives in promoting off-season tourism. He said that Ladakh has immense potential beyond the peak tourist months, and festivals like these help in attracting visitors during quieter periods, thereby supporting the local economy. Highlighting the uniqueness of the region, the LG said that the Iron Valley represents a rare cultural corridor where traditions and heritage are preserved in their purest form. He added that promoting such destinations will not only boost tourism but also help in preserving local culture and traditions. Tourists from across the country and abroad took part in village walk, cultural performances and local culinary experiences, making the festival a vibrant platform for cultural exchange and community engagement. Officials said that by linking natural beauty with cultural festivities, the Apricot Blossom Festival is helping position Kargil as an emerging destination for spring tourism, encouraging eco-friendly travel and providing livelihood opportunities to local communities during the lean season. For Parikrama, this is Anadali from Kargil Union Territory of Ladakh.
Cabinet clears 40,000 crore rupees mega hydro projects in Arunachal Pradesh. Let's hear more.
The Union Cabinet Committee on Economic Affairs has approved major investments for two hydroelectric projects in Arunachal Pradesh, together amounting to over Rs 40,000 crore, aimed at boosting power generation and strengthening infrastructure in the region. The Cabinet cleared Rs 26,069.50 crore for the 1,720-megawatt Kamala hydroelectric project to be constructed across Kamli, Kradadi and Kurunkume districts, with an estimated completion period of 96 months. The project will comprise 8 units of 210 megawatt each and 1 unit of 40 megawatt, generating 6,870 million units of electricity annually. The Kamla project will be developed through a joint venture between NHPC Limited and the Government of Arunachal Pradesh. The center will provide Rs 4,743.98 crore for flood moderation, Rs 1,340 crore for enabling infrastructure including roads, bridges and transmission systems, and Rs 750 crore as central financial assistance for the state's equity share. Arunachal Pradesh will receive 12% free power along with an additional 1% for the local area development fund. In a separate decision, the cabinet also approved Rs 14,105.83 crore for the 1,200 megawatt Kalai 2 hydroelectric project on the Lohit River in Anjaw district to be completed in 78 months. The project, comprising 6 units of 190 megawatt and 1 unit of 60 megawatt, is expected to generate 4,852.95 million units annually. Kalai 2 will be implemented through a joint venture between THDC India Limited and the Government of Arunachal. The center will extend Rs 599.88 crore towards enabling infrastructure and Rs 750 crore as central financial assistance for the state's equity share. The Kalai 2 project, the first in the Lohit Basin, is expected to strengthen power supply in the state, support peak demand management, and help balance the national grid. For Parikrama, Kenyum Ango, Akashwani, Itanagar.
Telangana has now become a Maoist-free state, Director General of Police Shivdar Reddy announced. He said this is a strategic success achieved by the state police in eliminating left-wing extremism. We have a report.
A total of 42 CPI Maoist members, including PLGA Battalion Commander Sodi Malla and several committee secretaries, surrendered before the police on April 10. Police seized 36 weapons and 800 grams of gold from them. The DGP said continuous operations by Telangana Greyhounds and state police led to this achievement. He added that in 2026, 205 Maoists have surrendered so far and 206 weapons have been recovered. According to official data, the local strength, which was 125 in 2023, has now reduced significantly. On NIA searches and notices in the state, the DGP clarified that Telangana police have no connection with them and that they fall under the agency's jurisdiction. He confirmed that the influence of PLGA has been completely wiped out in the state and said the long-term police strategy has paid off. The police department will now focus on further strengthening law and order in Telangana. Saptagiri for Parikrama, Akashwani News, Hyderabad.
और श्रोताओं, अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
We remember martyrs Bholo and Molo, who participated in the Bhil Girasia tribal uprising of 1922 in erstwhile Sirohi state. They were martyred while fighting against the British troops on 12th of April 1922.
Bholo and Molo participated in the Ekki movement that was launched to counter the harassment of tribals by the state officials. The movement sought to redress the grievances of tribals regarding the high rate of revenues and forced labor in the Sirohi state. The Bhils of Rohira and the Girasias of Chandila, Girvar, and the neighboring villages of Siava defied the orders by carrying away crops from their fields without paying the state's dues.
Hearing the news of the tribal gathering, the state army and 200 soldiers of the British army, led by Major Richards, reached the spot and opened fire on the agitators on 12th of April 1922 without any prior warning of dispersal. In the indiscriminate firing, Bholo and Molo and several other Girasia agitators were killed. Simultaneously with this firing, the village was looted and set on fire by the troops. We salute the great martyrs. We also remember the nationalist historian Rakhal Das Bandopadhyay, who was born on 12th of April 1885 in Murshidabad district, West Bengal. He is best known as the discoverer of the antiquity of Mohenjo-daro, the principal site of the Indus Valley civilization, through excavations.
Rakhal Das worked at the Indian Museum, Calcutta, the Archaeological Survey of India, and the Banaras Hindu University. Rakhal Das was a nationalist historian with a broad view of Indian civilization. Contributions of Rakhal Das in the fields of paleography and epigraphy are indeed great. His work, The Origin of the Bengali Script, was a pioneer attempt at tracing the development of Bangla script on the basis of inscriptions and manuscripts.
He also worked in the field of numismatics, giving a scientific account and critical analysis of the coins of ancient and early medieval India.
Bandopadhyay is popular for unearthing pre-Buddhist artifacts at the ruins of Mohenjo-daro and for noting similarities between the site at Mohenjo-daro and Harappa.
His interpretations and analysis about the civilization were published in a number of articles and books, such as An Indian City 5,000 Years Ago, Mohenjo-daro in Bangla, and Mohenjo-daro, A Forgotten Report. He also wrote many historical fictions.
Rakhal Das also worked on the ancient and early medieval sculptures and structural remains of Assam and discovered carvings of door jambs of a ruined temple at Dah Parvatiya near Tejpur.
Till his untimely death at the age of 45 years on 23rd of May 1930, Rakhal Das continued to work for unearthing the historical wonders of India. We salute the great nationalist.
इसके साथ ही भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध निदेशक, निर्माता, पटकथा लेखक और गीतकार केदार शर्मा की आज जयंती है। केदार शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत न्यू थिएटर कोलकाता में एक पेंटर और लेखक के रूप में की और यहां काम करते हुए उन्होंने फिल्म निर्माण की बारीकियों को सीखा और धीरे धीरे निर्देशन की ओर बढ़े। उनका करियर अपने शिखर पर तब पहुंचा जब उन्होंने 1940 और 50 के दशक में कई सफल फिल्मों का निर्देशन किया। खासतौर पर नीलकमल और चित्रलेखा जैसी फिल्मों ने उन्हें एक संवेदनशील और रचनात्मक निर्देशक के रूप में स्थापित किया।
रे तू काहे ना धीर धरे निर्मोही मोहना जा।
केदार शर्मा को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
Yes, and we also remembering M. Visveswaraya, who passed on this day in 1962, also referred to by his initials MV. He was an Indian civil engineer, administrator and statesman who served as the 19th Diwan of Mysore from 1912 to 1918. Visveswaraya is regarded in India as one of the foremost civil engineers whose birthday, 15 September, is celebrated every year as Engineers Day in India, Sri Lanka and Tanzania. He is also often regarded as the maker of the modern Mysore. And according to Prajavani, a Kannada language newspaper, he is also the most popular figure in the southern Indian state of Karnataka. Visveswaraya worked as a civil engineer for the government of British India and later as Prime Minister of the Kingdom of Mysore. For his services to British India, he was appointed CIE and later knighted. And he was also awarded the Bharat Ratna by the Government of India in 1955.
और इसके साथ ही हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार गुलशन बावरा की आज जयंती है। गुलशन बावरा ने अपने करियर की शुरुआत संघर्ष के दौर से की, लेकिन उनकी प्रतिभा ने जल्द ही उन्हें फिल्म जगत में पहचान दिलाई। उन्होंने 1960 और 70 के दशक में कई सुपरहिट फिल्मों के लिए गीत लिखे और अपने अलग अंदाज के लिए जाने गए। गुलशन बावरा को उनके उत्कृष्ट गीत लिखने के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
Mulwant Rai Himmatlal Vinu Mankad was born on this day in 1917. He was a former captain of the Indian cricket team and appeared in 44 test matches for India. He was best known for his world record setting opening partnership of 413 runs with Pankaj Roy in 1956, a record that stood for 52 years, and for running out of batsmen backing up at the non-striker's end. Mankading in cricket is named after him, and in June 2021 he was inducted into the ICC Cricket Hall of Fame.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है परिक्रमा के संघ को यहीं समाप्त करने का, तो हमें अनुमति दीजिए।
नमस्कार।